खुदावंद के प्यारे और जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको सुबह का सलाम कहता हूँ और आप सबकी सलामती हो। तो इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में से सीखना शुरू करें, आए हम सब खुदा के हुजूर झुकें और उस खुदा की शुक्रगुजारी करें जो हमारा बैठना उठना बखूब जानता है, जो हमारे ख्यालों को दूर ही से समझ लेता है, जिसने हमारी माँ के पेट में इससे पहले कि हम सूरत पकड़ते हमारी सब रफ्शों से वाकिफ था, उस खुदा से उसके मुंह की बातों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें और उसका शुक्र करें कि आज हम सब जिंदा हैं और ये जिंदगी की सांसें हर सुबह उसका फजल इसीलिए हमारे लिए तरोताजा है ताकि उसका मकसद पूरा करें, ताकि उसके बारे में जानें। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, हम तमाम आए हुए बहन भाइयों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, जो नहीं आ सके उनको बेदार कर। खुदावंद, तेरा कलाम हमारी जिंदगियों के लिए ताजगी और हमारी रूहों के लिए रूहानी खुराक है। आज हम जो कुछ भी तेरे कलाम में से सीखें, मेरे लबों का रखवाला बन, हर एक सुनने वाले कान पर खुदावंद तेरा कुदरत वाला हाथ चाहता हूँ, ताकि जो कुछ कानों के वसीला से रूह में उतरे वो 100 गुना फल लाए और तेरे बंदा यकूब की तरह ये ना हो कि हम महज सुनने वाले बने और अमल ना करें। तो आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे, सारे इंटरनेट पर सुनने वालों को जो मुस्तकबिल में सुनेंगे, अपने जलाल के लिए, उनकी रूहों की ताजगी के लिए अपने कलाम को इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। मेरे साथ निकाले नए अहदनामा में से इफिसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 2 बाप, उसकी 12वीं आयत को आज हम ख़त्म करेंगे, तो 11वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। इससे पहले कि हम इस हिस्सा को पढ़ें, आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि पालूस रसूल ने ये खत कैदखाना की हालत में लिखा और उन ईमानदारों को लिखा जो एक वक्त में इफिसस शहर में बसने वाले उन तमाम मंदिरों, देवी देवताओं और बुतों की पूजा करते थे। और जब पालूस रसूल का सफर, जब पालूस रसूल का वहां पर जाना हुआ, उसने वहां पर वक्त गुजारा, उसने वहां पर खुदावंद यीशु मसीह की मनाद, उसके नाम की मनादी की, उसकी खुशखबरी दी, तो बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया और वहां पर कलीसिया कायम हुई। तो 11वीं आयत में हम देखेंगे, 12वीं आयत में देखेंगे कि उस कलीसिया को कौन सी चीजों का सामना था और पालूस रसूल उनका माजी उनको याद दिलाता है, ना कि उन्हें शर्मिंदा करने के लिए, बल्कि उन्हें याद दिलाता है कि वो कौन थे और वो अब क्या हैं। तो 11वीं आयत पर हम फोकस करेंगे और 12वीं आयत पर ख़त्म करेंगे। इफिसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 2 बाप, उसकी 11वीं आयत में खुदावंद का कलाम फरमाता है। पालूस कहता है, बस याद करो तुम जो जिस्म के रोह से गैर कौम वाले हो और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतने के सबब से मख्तून कहलाते हैं, तुमको नामख्तून कहते हैं। गैर कौम से मुराद यानी कि वो तमाम कबीले, तमाम लोग जो यहूदी नहीं थे, और मख्तून यहूदियों को कहा गया है यानी कि उन्हें खुदा की तरफ से ये हुक्म था कि वो अपने बेटों का क्या करें, खतना करें। खतना के लिए जो आसान लफ्ज हम देखते हैं हमारी जुबान में बोला जाता है, जिसे हम कहते हैं कि अपने बेटों की वो खुशी पर क्या करते हैं, किसे जब कोई बेटा पैदा होता है तो 8वें दिन उसकी क्या करवाते हैं, सुन्नतें करवाते हैं, जिसे कह सकते हैं। सो 12वीं आयत में खुदा का बंदा पलूस कहता है कि यहूदी जो इस बात पर फख्र करते थे कि वो मख्तून हैं और तुम ना मख्तून हो, यानी कि यहूदी कहते थे कि हमें ये निशान मिला है कि हम खतना करवाते हैं और तुम गैर कौम, गैर यहूदी, जिसमें यूनानी, जिसमें कोई और भी कबीला हो सकता है, जिनमें हम भी सब शामिल हैं, क्योंकि हम में से कोई भी यहाँ पर यहूदी नहीं, हम में से कोई भी यहाँ पर दाऊद की नस्ल से या याकूब की नस्ल से या इब्राहिम की नस्ल से पैदा नहीं हुआ। हमारी रगों में जो खून है वो यहूदी खून नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम यहूदी हैं, बल्कि हम कहते हैं कि हम उस बाइबल के लिहाज से गैर कौमों में गिने जाते थे। लेकिन यीशु मसीह पर जितनों ने ईमान रखा वो सब अब क्या हैं? उसके रूहानी खानदान के लोग हैं, उसके अपने लोग। तो 12वीं आयत में खुदा का बंदा पालूस कहता है, अगले जमाना में मसीह से जुदा, वो बताता है उनको कि तुम गुजरे जमाना में जब तुम जिस्मानी थे, जब तुम खुदा पर यकीन नहीं करते थे, तुम खुदा से जुदा थे और इसराइल की संतलत से खारिज, यानी कि इसराइल शहर के वो तमाम, जिसे कह सकते हैं सहूलतें, इसराइली शहर के बशिंदे होते हुए, रहने वाले होते हुए, उस दौर में क्या था, उनको बहुत से अस्तहकाक या बरकतें या क्या कह सकते हैं, बहुत से अच्छी बातों का या दूसरे इख्तियारात का उनको क्या था, दर्जा हासिल था। जैसे बहुत दफा अगर कोई अमेरिका का शहरी है तो उसे अमेरिका का शहरी होते हुए बहुत से दूसरे क्या मिलते हैं, दर्जे मिलते हैं या क्या कहते हैं, फायदे मिलते हैं। तो पालूस कहता है कि वो कहते थे कि तुम इसराइल की संतलत से खारिज, यानी कि इसराइल के लिए जो खुदा ने नेहमते बरकतें और फायदे जो मेराज ठहराई है उससे तुम्हारा कोई तल्लक नहीं था। ये इफिसस की कलीसिया को सामना था, और वादों के ओहदों से नावाकिफ, वो तमाम वादे जो खुदा ने इब्राहिम से किए, इसहाक से किए, याकूब से किए, और उन तमाम फायदों से जो उनको मिल सकते थे, वो कहते थे कि तुम इनके हकदार नहीं हो। और जिस बात पर आज हम गौर करेंगे इस आयत का आखिरी हिस्सा, वो ये है, और ना अमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। और जब हमने पिछले दिनों में लफ्ज देखा जुदा और खुदा में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है, तो पालूस रसूल उस वक्त के ईमानदारों को याद दिलाते हुए कहता है कि एक दफा एक वक्त में जब तुम यीशु पर ईमान नहीं रखते थे, तुम यूहानी तौर पर मुर्दा थे, तुम इसराइल की उस तमाम बरकात से जो खुदा ने उनके लिए ठहराई उनसे महरूम थे, तुम खुदावन यीशु मसीह के उन तमाम वादों से नावाकिफ थे, खारिज थे। आपको याद होगा कि मैंने पिछले दिनों में आपको बताया कि लफ्ज खारिज का जिसे देखते हैं, यानी कि परदेसी होना, लातल्लक होना, किसी किस्म की कोई नापाकवियत ना होना। और आपको बताया कि उस दौर में जब यहूदी आबादी में अगर किसी को कोढ़ हो जाता था तो उसे शहर से बाहर निकाल दिया जाता था, उसे रोजमर्रा की जिंदगी और लोगों से खारिज कर दिया जाता था कि वो कोढ़ी है, और कोढ़ी शहर के अंदर नहीं रहते थे। जैसे हमारे नज़दीक ये कॉलेज है, इसकी चार दीवारी है और उसके अंदर सिर्फ वही लड़कियां जाती हैं जो पढ़ती हैं या जो काम करते हैं, दूसरा कोई नहीं जा सकता। वैसे ही उस दौर में यहूदी आबादियों में क्या होती थी, दीवार होती थी, फसील जिसे कहते हैं, जो शहर के इर्द गिर्द होती थी, उसमें आने जाने के लिए दरवाजे होते थे। तो अगर को कोढ़ी होता था तो उसे शहर से बाहर रखते थे, और जब कभी वो शहर के अंदर आता तो वो अपने, उसकी निशानी क्या थी, वो अपने सर को बिगाड़ता, अपने बाल को उजाड़ता और अपने ऊपर के होंठों को वो ढांपता था। ये हुक्म था पुराने अहदनामा में। आए इस हवाला को देखें जरा, मेरे साथ निकालें अहबार की किताब। जब हम अहबार उसका 13 बाप उसकी 45वीं और 46वीं आयत में देखते हैं, तो यहाँ पर खास एक नसीहत थी, एक तरीका कार था कोढ़ियों के लिए, जिनको खारिज कर दिया जाता था, अलहदा किया जाता था कि वो शहर में ना दाखिल हों, अगर दाखिल हों तो उन्हें हुक्म दिया गया था कि ये करें। सो अहबार उसका 13वां बाप उसकी 45वीं आयत में लिखा है, और जो कोड़ी इसमें मुबतला इस बला में मुबतला हो उसके कपड़े फटें और उसके सर के बाल बिखरे रहें और वो अपने ऊपर के होंठों को ढके और चला चला कर कहे नापाक नापाक। जितने दिनों तक वो इस बला में मुबतला रहे यानी कि कोढ़ की बीमारी, वो नापाक रहेगा और वो है भी नापाक और वो है भी नापाक। बस वो अकेला रहेगा, अकेला रहे उसका मकान शहर लश्करगाह के बाहर हो। यहाँ पर जो लफ्ज बाहर का इस्तेमाल किया गया है यानी कि वो आबादी से खारिज हो, दूर रहे, अलहदा रहे। तो इफ्सियों 2 बाप उसकी 12वीं आयत के दूसरे हिस्सा में पालूस कहता है, इसराइल की संतलत से खारिज और वादा के अहदों ओहदों से ना वाकिफ थे। तो ये हमने बातें सीखी थी पिछले दिनों में। और इसी तरह रूहानी तौर पर हर वो आज लड़की लड़का आदम जात जिसने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, वो खुदा की हजूरी से, उन नेमतों से और बरकतों से क्या है, खारिज है, बाहर है। क्यों? क्योंकि रोमियो 3 बाब उसकी 23 आयत में आपको पता होगा कि लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इसलिए सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, दूर हैं, अलहदा हैं और कह सकते हैं खारिज हैं उस खुदा की बरकात से, उसकी हजूरी से, उन तमाम नेमतों बरकतों से क्या है, महरूम है। आज हम इस बात पर गौर करेंगे। और पालूस कहता है, और ना अमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। यहां पर जब लफ्ज खुदा यसु मसीह के कलाम में पालूस रसूल रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में लफ्ज इस्तेमाल करता है और ना अमीद, तो हम देखते हैं कि पालूस ने ये बात कही कि बहुत से लोग ना अमीद हैं। जब कोई मर जाता है तो उन्हें कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं कि क्या होगा। लेकिन हम मसीहियों को जो यीशु पर ईमान रखते हैं, जो बाइबल की तालीम का यकीन करते हैं, हमें ये उम्मीद है कि यीशु मसीह आएगा और जो जिंदा है वो आसमान पर उठाए जाएंगे और जो सो गए हैं वो उठकर खुदावंद यीशु मसीह का हवा में इस्तकबाल करेंगे। तो ये हमारी जिंदा और मुकद्दस उम्मीद है कि मुर्दा जिंदा, मुर्दे जिंदा किए जाएंगे। और किसी मजहब में ऐसी उम्मीद नहीं, सिर्फ मसीहत है, मसीहत है जो इस बात की उम्मीद देती है। सो पालूस कहता है ना उम्मीद थे लेकिन हमें आज उम्मीद हासिल है, और दुनिया में खुदा से जुदा थे। जब लफ्ज दुनिया में खुदा से जुदा थे तो पालूस रसूल इफिसस के उन रहने वाले लोगों की हालत को देखते हुए कहता है कि वो खुदा के बारे में इलम रखते थे लेकिन खुदा पर यकीन नहीं रखते थे, सच्चे तौर पर उस पर उसकी परस्तश नहीं करते थे, क्योंकि उनके बहुत से खुदा थे, उनके बहुत से देवी देवता थे। तो यहाँ पर जो लफ्ज उसने इस्तेमाल किया ना, खुदा से जुदा थे, इसका मतलब है खुदा के बारे में इलम होना लेकिन उसकी परस्तश ना करना, खुदा के बारे में जानना कि कोई खुदा है लेकिन उसका यकीन ना करना। तो पालूस रसूल ने यही बातें, मेरे साथ एक हवाला निकालें, जब उसने रूम के शहर अथीना में गया, तो अथीने में गया तो वहां पर भी उसने यही बात कही। मेरे साथ निकालें ईमाल की किताब उसका 17वां बाप उसकी गालबन 22वीं आयत, यहाँ पर यही बात खुदा का बंदा पालूस कहता है अथीने के रहने वालों को। अथीने एक शहर था जो उस वक्त ऐसे था जैसे हम कह सकते हैं नज़दीक नज़दीक, एफसस, अथीने, अथीने के रहने वाले, और फिर क्या कह सकते हैं कि रोम और दूसरे तमाम एरिया, गलतियों का इलाका, ये सारे इर्द गिर्द थे। सो अथीने की कलीसिया, अथीने के लोगों को कहता है पालूस रसूल जब वो वहां पर जाता है, इमाल 17वां बाप उसकी 22वीं आयत में दूसरा हिस्सा, ए अथीने अथीने वालों, शहर का नाम, मैं देखता हूं कि तुम में हर बात मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवों देवताओं के बड़े मानने वाले हो। चुनाचे मैंने सैर करते और तुम्हारे मबूदों पर गौर करते वक्त ऐसी एक ऐसी कुर्बान गा भी पाई जिस पर लिखा हुआ था नामालूम खुदा के लिए। पालूस जब अथीने शहर में गया और अथीने के रहने वालों को उसने ये कहा कि मैंने इर्द गिर्द फिरा और तुम्हारे बहुत से देवी देवता हैं, जो हाथ के, जो लकड़ी के, जो पत्थर के, जो सोने के, जो चांदी के, जो पीतल के बने हुए हैं। उनको देखा तो उनके दरमियान मैंने एक कुर्बान गाह को, क्योंकि अथीने के लोग बहुत सी कुर्बानियां करते थे बुतों की, जिनमें बहुत से उनके तरीकाकार थे। बच्चों की कुर्बानी थी जिसमें वो अपने बच्चों को कुर्बान करते थे अपनी देवताओं देवी देवताओं को। औरतें नंगा नाच नाचती थी और नशे के आलम में वो बदी करते थे, और बहुत से उनके तरीकाकार थे। हमारे पास वक्त थोड़ा है, फिर इस बात पर गौर करेंगे। तो पालूस कहता है कि मैंने तुम्हारी तमाम कुर्बान का और तुम्हारे तमाम मंदिरों के दरमियान फिरते हुए एक जगह देखी जिस पर लिखा था कि ये जगह मखसूस है नामालूम खुदा के लिए। तो पालूस ने क्या कहा, बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूजते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूं। पालूस किसकी खबर देता था? खुदावंद यीशु मसीह की। इसी तरह इफिसस की कलीसिया में, इससे पहले कि वो कलीसिया बनी, इससे पहले कि वो खुदा के कलाम से वाकिफ हुए, वो खुदा से जुदा थे, इस दुनिया में खुदा से जुदा थे। यानी कि खुदाओं का इलम था, देवी देवताओं का इलम था, लेकिन उसकी पहचान, जिंदा खुदा की पहचान नहीं थी। और पालूस रसूल उनको पहचान दिलाता है 24वीं आयत में, 17 बाब, जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक हो के हाथ के बने हुए मंदिरों में नहीं रहता। वो खुदा हाथ का बनाया हुआ नहीं है, ना किसी चीज का मोहताज होकर आदमियों के हाथ से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सब चीज सबको जिंदगी और सांसें और सब कुछ देता है। पालूस रसूल बड़े गौर के साथ उनको समझा देता है कि वो खुदा जिसके बारे में मैं तुमको कहता हूं, बताता हूं, वो किसी चीज का मोहताज, ना किसी चीज का मोहताज होकर आदमियों के हाथ से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांसें और सब कुछ देता है। और उसने एक ही असल से आदमी को हर एक कौम एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम, तमाम रूहे जमीन पर रहने के लिए पैदा की, और उनकी मियादों और सुकूनत की हदें मुकरर की। वाहद खुदावन खुदा, इसराइल का खुदा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा है जो ऐसी कुदरत रखता है। पालूस रसूल उनको इस बारे में बता रहा था। ऐसा ही मामला गलतियों की कलीसिया को भी था, कि उन्होंने जब बुत प्रस्ती को छोड़ा, जब उन्होंने देवी देवताओं को छोड़ा, तो पालूस रसूल उनको भी दिलाता है इस बात की याद कि तुम ये करते थे, लेकिन अब तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ एक हवाला निकाले, फिर हम खत्म करेंगे। गलतियों 4 बाप, उसकी 8 आयत। यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस रसूल गलतियों की कलीसिया की फिक्र करते हुए उनको याद दिलाता है कि तुम अपने पुराने रिवाज के मुताबिक प्रस्तुत करना शुरू ना कर देना। कहता है, लेकिन उस वक्त खुदा से ना वाकफ होकर तुम माबूदों की गुलामी में थे, जो अपनी जात से खुदा नहीं, मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना, बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना, तो तुम उन जहीफ और नकम्मी इब्तदाई बातों की तरफ किस तरह फिर रजू करते हो जिनकी दोबारा गुलामी करना चाहते हो। आज बहुत दफा हमारे मसीहियों में ये बात है, जब मैं बुत प्रस्ती करता था मेरा अब नहीं जी चाहता कि मैं दोबारा जाकर चिराग बत्ती जलाऊं और दोबारा जाकर बुत और जुमे के चढ़ावे बांटूं और फूल चढ़ाऊं और ये करूं और वो टशन करूं। आज बहुत से मसीही ईमानदारों की ऐसी हालत है। तो खुदा ने यीशु को कबूल किया और फिर अपने देवी देवताओं को और अगड़ बगड़ बाबड़ बिल्लों को अपने सामने रखते हैं इबादत करने के लिए। याद रखें, सिवाय एक खुदा के और कोई खुदा नहीं। और उसने कहा है कि मैं जो हूँ सो हूँ। इब्राहिम, इसहाक, यकूब का खुदा और मसीह यीशु ने हमारा आसमानी बाप। तो पालूस रसूल की इस बात से हम क्या सीखते हैं कि हम भी जुदा थे, इसलिए हमें अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ जाने की जरूरत नहीं बल्कि नई जिंदगी में आगे ही आगे बढ़ने की जरूरत है। और यीशु मसीह ही वाहद है जिसकी इबादत और प्रस्तुति खुशखबरी देने की लोड़ है। तो हम खुदा के सुख चुके हैं और कल को हम 13वीं आयत पर गौर करेंगे। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि हम तुझसे जुदा थे, बरकतों से, नेमतों से, हर तरह की बातों से, लेकिन तूने मसीह यीशु में हमें पाक ठहराया। जितने यहाँ पर मौजूद हैं सबको बड़ी बरकत दे, जिन्होंने कभी पहले तुझे अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं किया, कबूल करने की ज़रूरत को खुदावन महसूस करें। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।